ओम शांति। 5 जनवरी 2019 अव्यक्त माह की अव्यक्त पुकार। तो शांति स्तंभ के जो 18 अभिलेख है जिस पे हर दिन हम चर्चा कर रहे हैं, आज का 5वां दिन, आज का महावाक्य जो शांति स्तंभ के ऊपर है वो है हमारे अति प्रिय पिता श्री जी की दिव्य स्मृति में, जो शिव बाबा का साकार माध्यम बने, हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बने और ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए आज का जो विशेष पुरुषार्थ है जो कि साकार मुरली में आया है वो है लौकिकता में अलौकिकता की स्मृति रहे, लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे हैं, अपने को आत्मिक रूप से न्यारा समझना है। कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है, उससे दुनिया को प्यारे नहीं लगेंगे, लेकिन जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करेंगे तो सबको प्यारे लगेंगे। इसे ही अलौकिक स्थिति कहा जाता है। तो आज 5 तारीख, आज का जो विशेष पुरुषार्थ है दिन भर के लिए वो है लौकिकता में अलौकिकता की स्मृति रहे। लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से क्या है, अलग, न्यारे, डिफरेंट, अपने को आत्मिक रूप से न्यारा समझना है। कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है, कर्म ही छोड़ देना ये बहुत आसान है, परंतु इससे दुनिया के प्यारे नहीं बनेंगे। लेकिन जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करेंगे तो सबको प्यारे लगेंगे। इसको ही अलौकिक स्थिति कहा जाता है। तो न्यारी स्थिति, आत्मा शरीर से अलग, इस स्वरूप में स्थित होकर कार्य करेंगे तो क्या लोग होंगे, अलौकिक स्थिति होगी। एक है देह, एक है आत्मा, इन दोनों के अलग होने की कुछ भिन्न भिन्न स्थितियां या अभ्यास है जिस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला अभ्यास तो यही है कि शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूं, इसी तन में बैठी हूं पर मैं आत्मा अलग हूं। शरीर क्या है और आत्मा क्या है, इसके बाबा ने ढेर सारे उदाहरण दिए जिस पर आप सबको चिंतन करना है। जैसे शरीर गाड़ी है, मैं आत्मा ड्राइवर हूं, ये एक उदाहरण। ऐसे कम से कम 50। शरीर क्या और आत्मा क्या, लिखना और फिर जो लिखा हुआ है एक पढ़ना और अभ्यास करना, फिर दूसरा पढ़ना, फिर अभ्यास करना। जैसे ये शरीर सीप है और मैं कौन हूं, मोती। देखना जैसे ये शरीर एक सीप है और मैं वो मोती हूं। इसका अभ्यास, शरीर से डिटैच होने के लिए ये अभ्यास बहुत जरूरी है। जैसे ये शरीर एक कमरा है, मैं शरीर का कमरे का मालिक हूं, इसका अभ्यास। जैसे ये पूरा शरीर एक कमरा है और मैं मालिक हूं, ये अभ्यास। इसी तरह और क्या क्या हो सकता है, पहले तो इसका चिंतन करना एकांत में। 2 कॉलम, मोटर ड्राइवर, कार ड्राइवर, इधर शरीर क्या है, इधर आत्मा क्या है, और उसका अलग अलग रीति से अभ्यास करना। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास यही है सारे ज्ञान का सार। जो शरीर से जितना डिटैच है उसी को आगे की सारी अवस्थाओं का अनुभव है। जो शरीर से डिटैच ही नहीं है और कितना भी सुन रहा है, पढ़ रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला हाथ में। तो ये सबसे बड़ा अभ्यास करना है। और क्या क्या हो सकता है, एक दो बताएंगे आप लोग, और बाकी सब गृह कार्य। शरीर क्या और आत्मा क्या? हाँ, तो शरीर एक सांप है और आत्मा उसके मणि है। वास्तव में मणि रहता है क्या? इस पर भी बहुत खोजे हुई है। इस पर भी कभी एक क्लास के पांडव भवन में हुई थी। कई लोग मानते हैं ये मिथक है, इट्स अ मिथ, पर बहुत सारे जूलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट जो कि भारत में आए और जिन्होंने खोजे की और सांपों की बहुत स्टडी की, कुछ कुछ लोगों ने पाया कि जो सांप लंबा जीते हैं 30-40 वर्ष से भी ज्यादा, उनके शरीर का जो पॉइजन होता है वो फॉस्फीन करके कुछ एक एलिमेंट है, वो यहां बन जाता है और वो कड़क हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है और फिर बाद में मोती जैसे दिखने लगता है। ऐसे भी बहुत सारी खोजें हैं। तो चलो वो तो एक उदाहरण है। तो जैसे ये शरीर सांप है और मैं मोती हूं, तो इस तरह से क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो एकांत में बैठकर सोचते हुए लिस्ट बनानी है और फिर उसका अभ्यास करना है। तो बाबा कह रहे हैं शरीर कौन सी स्थिति, अलौकिक स्थिति अर्थात, लेकिन जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करेंगे तो सबको प्यारे लगेंगे। जब हम अपने ही शरीर से न्यारे हैं तब सबको प्यारे हैं। तो सबसे पहला अभ्यास है कि मैं आत्मा अलग, शरीर अलग, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अभी हमारी जो स्थिति है वो गीला नारियल की स्थिति है। पूरा चिपका हुआ है आत्मा और शरीर जैसे एक है। कर्मातीत जो स्थिति है वो सूखा नारियल है। ऐसे ऐसे करो तो हिलता है अंदर का नारियल, उसकी खोल और गिरी अलग हो जाए। तो शरीर में रहते ये अनुभव कि मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर अलग है। तो सबसे पहला अभ्यास ये है, इसी शरीर में बैठा हुआ, बैठ के किया हुआ कि आत्मा मैं और शरीर अलग एक। दूसरा अभ्यास है मैं आत्मा इस शरीर से बाहर जा रही हूं। एक तो यहां बैठे बैठे ही अलग हूं, दूसरा इस शरीर में अब हूं नहीं, शरीर नीचे रह गया, तत्व तत्व में विलीन हो गए या भस्म हो गए या खत्म हो गए, और मैं आत्मा इस तन से निकलकर बाहर चली गई। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है जिसको बार बार करना है कि मैं आत्मा, जैसे अभी अभी बाबा ने कहा जो मुरली चली 31 तारीख की, एक सेकंड में क्या हो जाओ, कहां पहुंच जाओ, परमधाम। एक सेकंड में अपने राज्य में पहुंच जाओ, मन के मालिक हो, मन को ऑर्डर करो एक सेकंड में, ये रूहानी ड्रिल करो। तो शरीर से न्यारा होने की दूसरी अवस्था है कि मैं आत्मा इस तन से ही निकल गई। शरीर में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो अब नहीं रही, खींचने वाला कोई नहीं रहा, और ऐसा पाया गया है कि जो लोग अंतरिक्ष में जाते एक समय आता है जब यहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव खत्म हो जाता है, फिर वो गिरते नहीं है, इधर उड़ने लगते ऊपर। तो उसी तरह शरीर खींचते रहता है, खींचते रहता है, खींचते रहता है नीचे, परंतु एक अभ्यास ऐसा भी आएगा, एक स्थिति, एक समय, एक स्थिति ऐसी आएगी जब शरीर खींचना बंद कर देगा, फिर सहज आत्माभिमानी स्थिति होगी। तो ये दूसरा अभ्यास देह से न्यारा होने का, सारा खेल ही शरीर और आत्मा का है। आत्मा ऐसी चिपक गई है शरीर में कि उसको अलग करना ही मुश्किल हो रहा है। तो इस तन से बाहर जाने का अभ्यास और साथ साथ ऊपर से शरीर को देखने का भी अभ्यास, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, हे अर्जुन देख इस तन को, देख इस मनुष्य को, जन्म अनित्य, मृत्यु दुखद, और बीच में जरा और व्याधि, बुढ़ापा है और बीमारियां है, ये है शरीर, कहां है इसमें सौंदर्य। एक तो ये बुढ़ापे को देख लेना, बीमारियों को देख लेना, मृत्यु को देख लेना, शरीर को भस्म होते हुए देखना, मर चुका है ऐसा देखना, लाश को देख लेना, तत्व तत्व में समा रहे है ये देख लेना, मिट्टी है ये देख लेना, गंदगी से भरा है ये देख लेना। तो चेतना इस तन से डिटैच होगी, अन्यथा नहीं। जब तक वो ये नहीं देख लेती कि देह में भरा क्या है, वो देह को ही सुंदर समझती है और देह में ही आसक्त रहती है। सबसे बड़ा वैराग ही देह से वैराग है, इससे बड़ा वैराग और कोई है नहीं। तो दूसरा अभ्यास, मैं आत्मा इस तन से ऊपर जा रही हूं। तीसरा अभ्यास साक्षी, साक्षी अवस्था भी न्यारी अवस्था है कि सारे खेल को मैं देख रही हूं, उसमें इतना इन्वॉल्व ना हो जाओ कि वो साक्षीपन ही खो जाओ। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें हम एक्टर भी है तो हम दर्शक भी है, हम कलाकार भी है तो हम श्रोता और दर्शक भी है, हम ही अपने आप को देख रहे, हम बैठे हैं और अपने आप को देख रहे। हमारा अपने आप को देखने का कितना अभ्यास है, कितना साक्षी भाव है, क्योंकि दिनचर्या में साक्षी भाव खो जाता है, जिसके लिए कम से कम दो बारी सुबह और पूरा कर्म हो गया उसके बाद में शाम को, ये दो समय सारा खेल साक्षी होकर देख लेना। यह खेल बड़े मजे का है। दो तारीख तीन दिन पहले की मुरली में था ना, ये खेल बड़े मजे का है। तुम स्वर्ग में मुझे बुलाते हो क्या? आओ, तुमको मैं भेज देता और मैं चला जाता हूं, ये खेल बड़े मजे का है। तो देखना इस सारे ड्रामा को, सारे एक्टर्स को, सारे कलाकार क्या क्या कर रहे हैं, कौन कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, कौन अहंकार के घोड़े पर सवार है, कौन विकारों में डूब रहे हैं, कौन विकारों से बाहर निकल रहे और फिर डूब रहे हैं, खेल है। तो साक्षी स्थिति बड़ी मीठी अवस्था है, नॉन जजमेंटल स्थिति है, जिसमें हमें किसी को जज ही नहीं करना है कि किसने अच्छा किया कि बुरा किया। हम किसी के भी न्यायाधीश नहीं, कि जो हम ये कहें कि ये श्रीमत पर है ये श्रीमत पर नहीं, इसका योग अच्छा है इसका योग अच्छा नहीं, हमें किसी को भी जज नहीं करना है। ये जो अवस्था है साक्षी की अवस्था है, जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज्ड। तुम जज ना करो, तुम्हें भी जज नहीं किया जाएगा। फिर तो तीसरी अवस्था है न्यारेपन की, शरीर से न्यारेपन। इसमें हम चलो ये भी नहीं सोच रहे कि मैं आत्मा हूं, केवल देख रहे हैं दर्शक की तरह। सारा खेल मेरे सम्मुख हो रहा है, पर्दा है, एक स्क्रीन है जिसमें ये खेल चल रहा है, एक स्टेज है जिसमें ये स्टेज, और एक अखाड़ा है जिसमें ये खेल चल रहा है। एक तो पर्दा जिसको हम देख रहे हैं, या तो स्क्रीन, या तो फिर स्टेज, स्टेज ऐसा होता है जिसमें ये खेल चल रहा है। एक्टर्स आ रहे हैं, एक्टर्स जा रहे हैं, आने का दुख नहीं जाने का, आने का सुख नहीं जाने का दुख नहीं। आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। अच्छा है, आत्माएं आ रही है और आत्माएं जा रही है। तीसरा अभ्यास बताया अखाड़ा। अखाड़ा कैसे होता है? बीच में ग्राउंड होता है, इर्द गिर्द लोग खड़े रहते हैं, बैठते हैं, स्टेडियम। तो हम भी स्टेडियम में हैं, फुटबॉल का मैच चालू है। माया के 5 खिलाड़ी, प्रकृति के 5 खिलाड़ी और खेल चालू है। तो साक्षी बैठे हैं और खेल देखा जा रहा है, स्वयं का ही खेल देखना। एंट्री हुई, क्रोध, आवेश, फिर शांत, फिर योगी तो कभी भोगी, तो कभी एकदम उपराम अनासक्त, तो कभी किसी में आसक्त। तो तीसरा अभ्यास है साक्षी। चौथा अभ्यास, इंडिफरेंट जो है उसमें नेगेटिविटी है, साक्षी में न्यूट्रल है। इंडिफरेंट अर्थात तिरस्कार है उसमें, इंडिफरेंट अर्थात जिसमें घृणा है, नफरत है, थोड़ा सा मन में उस व्यक्ति के प्रति नकारात्मक भाव है। अभी तक कोई किसी की केयर कर रहा था, अभी तक, अभी एकदम उसकी केयर करना बंद कर दिया, इंडिफरेंट हो गया, कोई लेना देना नहीं, ये भाव है। क्योंकि उसने हमारी मदद नहीं की, अब हम भी मदद नहीं करेंगे, ये भाव, ये इंडिफरेंट एटीट्यूड है, तिरस्कार युक्त भाव। परंतु साक्षी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव से परे की अवस्था है। साक्षी में हम केवल डिटैच्ड ऑब्जर्वर है, देख रहे हैं चीजों को, इतना डिटैच है, कर कुछ भी नहीं रहे, नो इंटरफियरेंस, कहीं पर कुछ नहीं कर रहे, ना अपने जीवन में कुछ कर रहे ना किसी और के जीवन में। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जैसे भगवान कैसे साक्षी है, कुछ कर रहा है वो, संपूर्ण साक्षी है। संसार में 1000 हलचल हुई है द्वापर से, आया के बीच में, भी जाऊं ये तो थोड़ा ज्यादा ही कर रहे लोग, वो नहीं आया। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तसफल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, उसने कर्म प्रधान इस संसार को बना के रखा है। जिसने जो कर्म किया उसको वैसा फल मिल रहा है। वो कर्म इस जन्म का हो सकता है, किसी और जन्म का हो सकता है। हमारी एक काल दृष्टि है, उसकी त्रिकाल दृष्टि है, इसके लिए वो साक्षी रह पाता है, उसको दुख नहीं होता है। जैसे महाभारत में दिखाया है, एक ही पात्र है जो निरंतर साक्षी है, श्री कृष्ण, उसे किसी बात का कहीं दुख नहीं हो रहा है। पांडवों के साथ ऐसे ऐसे अत्याचार हुए पर वो दुखी नहीं है, कहीं पर भी दुखी नहीं है। गोपियों के साथ खेल रहा है, रास रचा रहा है, परंतु जब जाने का समय आ गया तो नष्ट हुआ, कोई लेना देना नहीं, बाद में कभी मुड़कर भी नहीं देखा। हर जगह साक्षी है वो, लीला पुरुषोत्तम कहा है उसे, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा है, लीला पुरुषोत्तम। तो साक्षी बड़ी ऊंची अवस्था है अध्यात्म की, और भक्ति मार्ग और सन्यास मार्ग वाले तो कहते हैं कि ये सर्वोच्च अंतिम अवस्था है, ये सभी साधना का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद के बहुत सारे जो लेटर्स लिखे गए हैं, अभी अभी भाषण दिया और उसके बाद में तुरंत लेटर, ढेर सारे लेटर्स है, सभी लेटर्स में एक साक्षी भाव है। जैसे वो व्यक्ति ऐसा लिख रहा है जैसे वो उसके साथ आइडेंटिफाइड नहीं है, जैसे वो लिखा है कि मैंने भाषण दिया और उसका बहुत अच्छा प्रभाव हुआ, सब लोग आए, ऐसा लिख रहा है जैसे कोई तीसरा व्यक्ति लिख रहा है, जैसे वो नहीं है, वो कोई और है, थर्ड पर्सन साक्षी। तो लंबे समय की साधना होती है उसके बाद में साक्षी भाव आता है, ऐसी मान्यता है। परंतु भगवान जब संसार में आता है वो कहता है साक्षी भाव की तुम अभ्यास करो, अभी अभ्यास करो, वो परिणाम भी है तो अभ्यास भी है, दोनों ही चीजें हैं। साक्षी देखते रहना साक्षी होकर सबको, और सबसे बड़ा साक्षी संसार में भगवान स्वयं है। जैसे डायमंड हॉल में बाबा आए हैं, आए और सबको देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, कितना साक्षीपन है। तो जैसे वो साक्षी है उसके जैसा साक्षीपन सीखना है, जैसे मैं साक्षी हो तुम भी बनो, क्योंकि जो दुख का कारण है हमारे जीवन में वो इसलिए है क्योंकि हम साक्षी नहीं है। यदि हम डिटैच हो जाए, घृणा की वजह से नहीं, नफरत की वजह से नहीं, क्योंकि श्रीमत है इसके वजह से, तो वो अपने आप, इन्वॉल्वमेंट इज सॉरो, डिटैचमेंट इज हैप्पीनेस। जो जितना डिटैच हो सकता है और कितना फास्ट हो सकता है उस पर उसकी खुशी निर्भर है, जो इन्वॉल्व है, अटैच है, फंस गया है, वो चाहे कितनी भी बड़ी सेवा क्यों ना हो वो भी बंधन का कारण बन जाएगी। तो तीसरी अवस्था है साक्षी। चौथी अवस्था जिससे आत्मा न्यारी हो जाए वो है उपराम। उपराम अर्थात उपराराम, उपराम अर्थात उपराम, उप अर्थात समीप। यहां की सभी बातों से परे, जैसे यहां की कोई चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। कल भी दो तीन दिन पहले था ना, तुम वनवा में हो, यहां की कोई भी चीज हमें अच्छी नहीं लगती, अंदर से वैराग है, एक जन्मजात वैराग। यहां की जो चीजें हैं खींचती नहीं अपनी ओर, अच्छी नहीं लगती है, सहज अच्छी नहीं लगती, ऐसा वैराग। तो उपराम स्थिति अर्थात हर चीज से उपराम, आवाज से उपराम, परे, छोटी छोटी आसक्तियां, ये क्या है, वो क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, ये सब छोटी छोटी बातों से परे। वरदान था ना दो तीन दिन पहले तुम्हारे पास, तुम क्या करते हो, सूली को काटा और बड़ी चीज को छोटी, क्योंकि तुम्हारे पास बड़ा बाप है। जी, कोई चीज अच्छा न लगना साक्षी भाव तो नहीं है, परंतु वैराग की अवस्था जरूर है। हमारा मन ऐसा है, कोई भी एक स्थिति में लंबा समय नहीं टिकता है, उसको बहुत सारी स्थितियों की आवश्यकता है सुबह से शाम तक। इसलिए हमने कहा साक्षी भाव केवल दो समय, सुबह और शाम। दिन भर में हो जाए तो बहुत अच्छा, परंतु दिन भर का पीरियड टेम्पटेशन का पीरियड है, युद्ध का पीरियड है, उस पीरियड में वैराग वाली चीज चाहिए, उस पीरियड में ऐसा चाहिए कि मुझे ये अच्छा ही नहीं लगता है, तो वो वैराग हमको बचाए रखेगा ताकि हम शाम को फिर से साक्षी स्थिति में स्थित हो जाए। साक्षी तो बहुत ऊंची स्थिति है, बाकी सारी चीजें जो है वैराग वाली वो थोड़ी नीचे की चीज है। साक्षी परिणाम है सभी चीजों का, परंतु वो स्थिति हमेशा रहेगी नॉट पॉसिबल, उसमें बहुत सारी चीजें आएगी। साक्षी रहते जैसे इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, फिर कहां से साक्षी। और अगर कोई व्यक्ति विकारों में चला गया है, अगर कोई व्यक्ति किसी में आसक्त हो गया, व्यक्ति में, वैभव में, वस्तु में, भोजन में, तो साक्षी हो सकेगा क्या? तो दो समय साक्षी स्थिति का अभ्यास, सुबह अमृत वेला योग, नुमा शाम का योग, पूर्ण साक्षी, किसी से कोई लेना देना नहीं, केवल खेल चल रहा है। या तो रात को सोते समय साक्षी, पर दिनचर्या में वैराग चाहिए। मन इतने ट्रिक्स, इतना धोखे देता है कि वो क्या कब कर देता है पता नहीं चलता है। बड़ी बड़ी शर्तें, बड़ी बड़ी प्रोमिसेस, प्रतिज्ञाएं, और कब टूट जाती है पता ही नहीं चलता है। हजार बार व्यक्ति ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेता है और कब तोड़ देता है उसको ही नहीं पता चलता है। इसके लिए वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर विथ इट्स फेयर फेसेस एंड फॉल्स आर्ट्स, विथ इट्स sanctified shopkeeping, with its blackguardism, with its utter hollowness on the surface, with its utter hollowness within and show off on the surface. मुझे घृणा है इस संसार से, यहां की बातों से, योगी के महावाक्य है। तो चौथी अवस्था बताई, उपराम। उपराम अर्थात घृणा भी अटैचमेंट का दूसरा रूप है, परंतु जो व्यक्ति अटैच है उसको वहां से निकलने के लिए, उसको इंग्लिश में एवर्शन थेरेपी कहते हैं। जैसे कोई स्मोकिंग करता है, वो 10 चीजें ट्राई करता है, इफ देयर आर 10 मेथड्स, एक मेथड है अवर्शन थेरेपी। अवर्शन अर्थात जिससे छूटना है उसके प्रति घृणा उत्पन्न करना। जैसे बाबा कहते हैं संसार छीछी है, यह संसार नरक है, कुंभीपाक नरक है, तुच्छ है, यहां पे कुछ भी तुम्हारे योग्य नहीं है, इसको तुमको देखना भी नहीं है। दिस इज नोन एज अवर्शन थेरेपी। यह भी एक थेरेपी है। माना कि वो भाव भी नहीं होना चाहिए, परंतु जो विकार है उससे छूटने के लिए, उन विकारों से घृणा जब तक नहीं आएगी तब तक छूटता नहीं। जब तक व्यक्ति जो रोज स्मोकिंग करता है और एक दिन जब हार्ट अटैक आ जाता है, ऐसे हमने इतने सारे पेशेंट देखे हैं, जब हार्ट अटैक आया और एडमिट हुए उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ा। तब तक उनके घर वाले रोज उनको समझाते थे कि छोड़ो छोड़ो ना छोड़ो ना, नहीं छोड़ा। जब बहुत धक्के लगे, एडमिट, ये प्रिक्स, एंजियोग्राफी, क्या 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 करना पड़ा, तब जाके छूटा उनका ऐसा बड़ा शौक। तो उसके बाद तो एकदम घृणा। अभी आके कहते हैं ओपीडी में, और अभी आके ओपीडी में कहते हैं कि अगर कोई बाजू वाला भी स्मोकिंग करता है तो हम सहन नहीं कर पाते, और पहले खुद चेन स्मोकर थे। चेन स्मोकर अर्थात एक पूरी अभी खत्म नहीं हुई तो दूसरी रेडी चाहिए, उसको कहते हैं चेन। उससे घृणा, उसकी जो निगेटिव बातें हैं उससे घृणा। ये दिस इज अवर्शन थेरेपी। अवर्स अर्थात बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो चीज हमको पता है ये करनी नहीं है, विकार काम, उसके प्रति घृणा, विष बाबा कहते हैं। तो वो कम से कम जब तक वो घृणा का भाव रहेगा ना, वो हमको उसमें जाने नहीं देगा, क्योंकि विकार शरीर से संबंधित नहीं है, संकल्प से संबंधित है। शरीर की उत्तेजनाओं का संबंध शरीर से नहीं, मन से है, विचार से है। तो उपराम दोनों समान अवस्था है, साक्षी और उपराम। पर उपराम अर्थात इस संसार की कोई भी चीज हमको नहीं चाहिए। एक आंतरिक वैराग की अवस्था है वो, यहां के कोई सुख हमको नहीं चाहिए, यहां का कुछ है तो ठीक, सब छिन जाए तो भी ठीक। दो तीन दिन पहले मुरली में था ना, वो भील क्या खाता है, वो साहूकार इतना खाता है फिर भी बीमार पड़ता है, और वो भील देखो सुख से सोता है। तुमको चाहिए क्या, पेट को पेट क्या मांगता है, दो रोटी बस। जब मन ऐसी अवस्था में है तो क्या विकार की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा। परंतु थोड़ी कम वैराग की अवस्था में है तब कभी भी टेम्प्ट हो सकता, कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया। कुछ दिन पहले मुरली में था संघ के बारे में, संघ की संभाल करो। पर आज 5 तारीख है तो संघ की संभाल करो। ये चौथी अवस्था। पांचवी अवस्था शरीर से न्यारी वाली, लगन में मगन, लगन में मगन, उसकी यादों में ऐसे खो गए हैं, मगन है आत्मा, अपने आप शरीर से न्यारी है, शरीर को क्या हो रहा है वो भी नहीं पता चल रहा है, ऊपर खो गई है। जैसे प्रेम की अवस्था है, परमात्म प्रेम में मगन अवस्था, वो एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें इसमें कोई वैराग नहीं है, इसमें कोई साक्षी भाव नहीं है, इसमें किसी बात से उपराम नहीं है, इसमें यह नहीं सोच रहे मैं आत्मा हूं, यह भी नहीं सोचा जा रहा है, या इसमें यह भी नहीं सोच रहे मैं आत्मा अभी इस शरीर से बाहर निकली, यह पहले की जो चारों चीजें वो कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें प्रेम है बस, और प्रेम में आत्मा खो गई है बस। उसे पूरा ज्ञान भी पूरा ढंग से समझ में नहीं आया है, हो सकता है कोई अनपढ़ माता है, पर प्रेम मगन है, आंसू बह जा रहे हैं, दूर बैठी है डायमंड हॉल में सबसे पीछे, कुछ भी नहीं दिखता है उधर क्या हो रहा है, स्टेज स्क्रीन का भी नहीं दिखता है, पर आंसू उसके थम नहीं रहे, क्योंकि उसको पता है जो सामने है ये भगवान है, और स्टेज पे घूमने वाले उनको कुछ नहीं, कारोबार चल रहा है जैसे, कोई अनुभव नहीं, ऐसा भी हो सकता है। भगवान से सामने जाके टोली लेने वाले ये हो सकता है, बस ये तो रूटीन है, इसके लिए प्रेम में मगन, लगन में मगन अवस्था। देह से ये सबसे आसान मार्ग है, परंतु कीमत चुकानी पड़ती है इसको भी, इतना आसानी से नहीं आता है ये। वो दिखाया है चैतन्य महाप्रभु के पास, सुबह सुबह एक व्यक्ति आता है, गृहस्थी पूछता है, हे प्रभु मुझे बताओ परमात्मा प्रेम क्या है, या भगवान से प्रेम कैसे करते हैं। चैतन्य महाप्रभु रात भर रो रहे हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, आंसू बह जा रहे हो, पूरा बिस्तर गीला है। वो कहते हैं मेरी यह अवस्था देखकर अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है भगवान का प्रेम क्या है, तुमको बताने से क्या समझ में आएगा। परमात्मा प्रेम अव्याख्य है, अनस्पीकेबल, इनडिस्क्राइबेबल। यह नैनो आंखों से बह जाता है, सुनाया नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, ये वो प्रेम है। ये सारे प्रेम। मीरा किसी डांस स्कूल में गई थी नृत्य सीखने, या किसी सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर दी थी मीरा ने, वो जो निकला था वो स्वस्फूर्णा से प्रस्फुटित हुआ था, वो जो निकलता था वो कोई कवि थी क्या, या लेखक थी या गायक थी, कुछ नहीं थी। उसके काव्य उसके भजन जो लिखे हैं वो क्या है, इट्स द आउटपोरिंग ऑफ द सोल, आत्मा से बाढ़ आ रही है प्रभु प्रेम की, वो अभिव्यक्त हो रही है। चाहे मीरा, चाहे तुलसीदास, चाहे चैतन्य महाप्रभु, चाहे वो अक्का महादेवी, चाहे वो सूफी सेंट राबिया, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी, सेंट फ्रांसिस डी सेल्स, सेंट जॉन, सेंट बर्नार्ड, ये सारे अलग अलग देशों में थे, अलग अलग स्थानों पर थे, चाहे वो मंसूर, जुनेद, भाईजीत, रामकृष्ण परमहंस, सूरदास, क्या था इनमें? एक चीज कॉमन थी, प्रभु प्रेम। परिचय था या ना था उसकी कोई बात ही छोड़ दो, परंतु डूबे हुए लोग थे, देवर मिस्टिक्स। इनको अंग्रेजी में मिस्टिक्स कहा जाता है, मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद। तो लगन में मगन अवस्था, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु की तीन अवस्थाएं बताइए। एक तो पहली अवस्था जिसमें वो पूरा होश में है, फिर गुणगान कर रहे हरे कृष्ण जोर जोर से, सड़कों पर नाच रहे, ये पहली अवस्था जिसमें वो होश में है। दूसरी अवस्था विरह की अवस्था है, अब वो किसी के साथ नहीं है, तड़प रहे, बिछो जिसको कहते हैं हिंदी में, बिछो इस पैंग्स ऑफ सेपरेशन, क्यों नहीं मिल रहा है वो, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, आंसू बह जा रहे, कहां हो तुम कहां हो तुम, यहां जा रहे, यहां दिखता है कृष्ण, वहां दिखता है, वहां गिरते हैं वहां गिरते हैं, विक्षिप्त अवस्था है पागलों सी। तीसरी अवस्था है जिसमें समाधि में कुछ बोल ही नहीं रहे, चुप हो गए। ये तीन अवस्थाएं बताइए। तो भगत जो थे, वास्तव में हम ही सब वो भगत थे जिन्होंने भगवान को बहुत प्यार किया, बहुत पुकारा, बहुत प्रेम में मगन हो के पुकारा। तो वो अवस्था जब अब भगवान मिल गया है, तो वो अवस्था हो जाए जो मीरा की भक्ति में थी, हम ज्ञान मीराए हैं। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। परमात्मा प्रेम पर बड़ी बड़ी मुरलियां चली है। हो सकता है, पर कितना डिटैचमेंट और कितनी अनासक्ति चाहिए तब ये होगा। जिसमें एक प्रभु के अतिरिक्त तो कुछ भी अच्छा ना लगे। मीरा कहती है भोजन भवन भलो नहीं लागे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता मीरा, भोजन अच्छा नहीं लगता, भवन अच्छा नहीं लगता, केवल तुम ही अच्छे लगते हो बस। ऐसी एक अवस्था मन की स्थिति। पांचवी छठी लगन में मगन। उसके बाद में नेक्स्ट ज्ञान चिंतन की अवस्था, यह भी देह से न्यारी अवस्था है। छठी कैसे, पांचवी कैसे, छठी नहीं, ये सिक्स्थ ज्ञान में, ज्ञान चिंतन की सिक्स्थ। ज्ञान चिंतन करते करते मगन हो जाना, तो शरीर से न्यारा अपने आप हो जाएंगे। जो अवस्था योग से आती है वो अवस्था ज्ञान के चिंतन से भी आएगी, परंतु वो एकांत, वो मौन और फिर ज्ञान चिंतन चाहिए। कैसे करेंगे? जैसे कोई महावाक्य है मुरली का, पढ़ा और उसमें गहराई में जाने का अभ्यास किया। कोई भी एक महावाक्य ले लिया और उसकी गहराई में जाना और उसका ढेर सारा विस्तार करना मन ही मन, और मगन हो जाना, अनइंटरप्टेड चिंतन। वो जो अवस्था है बड़ी पावरफुल अवस्था है। उसी अवस्था में हमारे जीवन के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जो हमको वैसे समझ में नहीं आते। तो ज्ञान चिंतन की जो अवस्था है वो भी शरीर से न्यारेपन की अवस्था है, शरीर से डिटैच कर देती है, ख्याल नहीं रहता शरीर को कुछ हुआ। जैसे वो फुटबॉल का प्लेयर, ठीक है, फुटबॉल खेल रहा है और खेलते खेलते उसके पैर को चोट लग गई, खून बहा जा रहा है फिर भी खेलना जारी है, खून बह रहा है उसको पर पता नहीं उसको चोट लग गई और खून भी बह रहा है, 15 मिनट तक खेल रहा है, 15 मिनट के बाद खेल एंड होता है, उसके बाद में देखता है अरे खून, अरे मुझे दर्द हो रहा है और खून तो 15 मिनट से बह रहा है, क्या था ये? हमारा ध्यान अगर शरीर पर नहीं है तो शरीर में दर्द भी हो या कुछ तकलीफ भी हो तो वो हमें महसूस नहीं होगी। जैसे कोई लैला या मजनू, वर्तमान समय का कोई मजनू, पुराना नहीं वर्तमान का, खोया है, वो अपनी लैला के बारे में सोच रहा है, सामने से बारात चली गई, उसको पता ही नहीं, उसने आवाजें भी नहीं सुनी, वो इतना खोया है उसकी याद में, कोई आके पूछे कि यहां से कुछ बारात ढोल विल बजा तुमने सुना, वो कहता मुझे तो कुछ भी पता नहीं, तो क्यों वो सुन नहीं रहा था, कान तो थे, फिर मन नहीं था। हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं या जो कानों पर है, अगर माइंड कहीं और है तो यहां की कोई बात सुनाई नहीं देती। जैसे हम कभी कभी अपने डिपार्टमेंट में और कोई चीज में खो गए सोचते सोचते और बाजू वाले ने कुछ कहा सुनाई दिया नहीं, हम कहेंगे फिर से बताओ क्या कहा, तो अटेंशन। तो यहां बात हम कर रहे थे ज्ञान चिंतन की, ज्ञान चिंतन भी एक ऐसी अवस्था है कि वो करते करते करते, और ये ज्ञान चिंतन भीड़ में भी किया जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते तुम्हारा मोबाइल क्यों बजता है मुझे डिस्टर्ब होता है, किसी का मोबाइल और ढोल बज रहे हो, आपने देखा होगा कोई कोई लोग आराम से सोते हैं ढोल भी बजने दो, और कोई लोगों को दरवाजा भी खोलो तो आंख खुलती है, ऐसे होते हैं, लाइट ऑन कर दो आंख खुल गई, किसी को लाइट ऑन रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी नींद आती है, लाइट हो या ना हो, बिस्तर हो या जमीन हो, यह भी प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं कि हमको बिस्तर ही चाहिए, उसमें भी बड़ा मजा है नीचे सोने में। सातवीं अवस्था कर्मयोग, यह भी शरीर से न्यारीपन की अवस्था है। कर्मयोग पर तो काफी चर्चा की है पिछली बार, उसमें ढेर सारी बातें हैं, तो ऐसी ये सात बातें हैं, इसलिए न्यारी अवस्था के लिए शरीर से डिटैच, शरीर से अलग। सबसे पहला बताया इस तन में बैठे ही अपने आप को अलग समझना, तो उसको आपको होमवर्क करना है, एक तरफ बॉडी लिखना एक तरफ सोल। क्या क्या उदाहरण बाबा ने दिया है, कार ड्राइवर, सीप मोती, इस तरह से घर मालिक, लिस्ट बनानी है लंबी एक, और उसका अभ्यास भी करना है। तो सबसे पहला मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, डिटैच हूं, पृथक हूं, भिन्न हूं, ये इधर मैं इधर, एक। दूसरा इस शरीर से बाहर जाने का अभ्यास करना, शरीर से भी और दुनिया से भी, मैं इस शरीर को छोड़कर जा रही हूं, नीचे डेड बॉडी, लोग आ रहे उठाने के लिए, डिपार्टमेंट वाले तो बहुत ही खुश दिख रहे हैं अंदर ही अंदर, पर दिखा रहे बड़े दुखी है, कोई सोच रहे अच्छा हुआ गया, सीट खाली हो गई, छोड़ता ही नहीं था, कमरा थोड़ा अभी बड़ा हो गया, हम सोचते थे ये मेरा वो मेरा, ये मेरी वो मेरी, किसी को तो खबर ही नहीं, जब किचन में गया तो देखा हलवा तो फिर पूछता है कौन गया, तब पता चला उसको कि हम गए, किसका भोग है। और हम अपने आप को इतना ऊंचा समझ के रखे, हजारों आए और हजारों चले गए, यज्ञ रुका नहीं, स्वयं की मृत्यु का दर्शन मरने से पहले करना है इन्हीं आंखों से, स्वयं की मृत्यु का दर्शन इन्हीं आंखों से करना। बड़ा ही रंगीन नजारा है, ऊपर से देखना घूमते घूमते लोग क्या क्या सोच रहे हैं। कोई कह रहा है जल्दी चलो, भोजन का टाइम हो रहा है, इधर आग अभी लगी भी नहीं। कोई कहता है इधर से लकड़ी रखो उधर से रखो, कोई कहता है इतना मत करो, हमारी तो किसी को परवाह ही नहीं, बाकी चीजों की चालू है सर। देख लेना उसको। तीसरा साक्षी, साक्षी नारी न्यारी अवस्था है, सब खेल चालू है, रामलीला मंडली, राम जी लक्ष्मण जी खेल चल रहा है, इसमें उत्तेजित होने की कोई बात नहीं है। ठीक है रावण उठा के लेके गया तो इसमें ये करने की क्या बात है। बंगाल में एक बहुत बड़े महान व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो एक बार एक रामलीला देखने गए तो जैसे ही रावण आया और सीता को पकड़ के लेके जाने लगा, इतना क्रोधित हो गए, इतना क्रोधित हो गए और सीधा स्टेज पे पकड़ के उसको फिर रावण को पकड़ लिया। तुम्हारी ये हिम्मत कि सीता माता को तुमने हाथ लगाया, और तो वो जो एक्टर था उन्होंने बिल्कुल उसके चरणों में नमस्कार कर दिया, कहता है धन्यवाद मेरी एक्टिंग सफल हुई। और वो जो चप्पल से उसको मारते विद्यासागर, आज भी उस चप्पल को विद्यासागर चप्पल के नाम से बंगाल में फेमस है, जाओगे तो ले लेना वहां पर विद्यासागर चप्पल। उससे ही मारा था उसको। तो ये खेल है, नाटक चालू है, पात्र है, मंच पर आए हैं, कोई सूत्रधार कोई पात्र कोई कुछ तो कोई कुछ। अभी अभी रावण पर गुस्सा कर रहा है लक्ष्मण, थोड़ी देर के बाद पीछे बैठकर दोनों चाय पी रहे हैं स्टेज के पीछे। खेल है, तो ये खेल चल रहा है यहां पर। तीसरा चौथा उपराम, ऊपर निकल जाना सबसे। यहां का, यहां की मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए, यहां का सुख यहां के वैभव यहां का नाम मान शान सब तुच्छ है, तेरे प्यार के आगे वो ताज फीका वो तख्त फीका, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे, बाबा ये कितने प्यारे नजारे। तो चौथा पांचवा अगला लगन में मगन, लगन में मगन होने का प्यास। आने वाला संडे जो है उसमें सेकंड पार्ट जो मुरली का है उसमें शायद बाबा ने ये बात कही है, वो पूरी मुरली चुने हुए महावाक्य है परमात्मा प्रेम पर। नेक्स्ट ज्ञान चिंतन को बढ़ाना है, खाली मुरली सुन ली या क्लास सुन लिया यहां तक छोड़ना नहीं है, यहां से तो शुरुआत हो रही है चिंतन की, जो अब तक सुना किसी और का चिंतन है, हमको अब इसको बढ़ाना है। किसी ने दो बातें बताई तो हम उसको 10 बातें बना दें, यहां से उसको बढ़ाना है। और लास्ट बात बताई कर्मयोग, कर्म को इतनी कुशलता से करना, एक्यूरेसी से करना, डिटैचमेंट से करना, इन्वॉल्व होके करना, निस्वार्थ भाव से करना, याद में करना, आत्माभिमानी स्थिति में करना, श्रीमत अनुसार करना, अर्थात वो भी देह भूल जाता है, अथक होकर करना, टायरलेस होकर करना। आप देखे होंगे कितनी इतनी तन्मयता से सेवा करते हैं माताएं भाई बहने यज्ञ में कि शरीर भूल जाता है उनको, वो भी तो शरीर से न्यारेपन की अवस्था है। तो शरीर से न्यारेपन की ऐसी 7 अवस्थाएं एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो लौकिकता में अलौकिकता की स्मृति रहे, लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे हैं, हम अल्लाह लोक है, हम वो नहीं कर सकते जो संसार के लोग कर रहे हैं। संसार के लोगों का दुनिया अलग, हमारी दुनिया अलग, उनका मार्ग अलग, हमारा मार्ग अलग, उनके इंटरेस्ट अलग, हमारे इंटरेस्ट अलग, हम वो नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। उनके साथ अगर हम भी भागने लगे तो हम में और उनमें अंतर क्या? युधिष्ठिर भीम को बार बार यही समझाता है कि वो दुर्योधन है, तुम वो नहीं कर सकते जो तुम दुर्योधन कर रहे हैं, तो तुम में और दुर्योधन में अंतर क्या? भीम बार बार क्रोधित हो जाता है ना तो अंतर क्या रहा फिर दोनों में? अपने को आत्मिक रूप से न्यारा समझना है, कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है, उससे दुनिया के प्यारे नहीं लगेंगे, दुनिया को प्यारे नहीं लगेंगे, लेकिन जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करेंगे तो सबको प्यारे लगेंगे। इसे ही अलौकिक स्थिति कहा जाता है, इसे ही अलौकिक स्थिति कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।